देखिए भाई आगे सबक अल आमिलु लफ्जियन कान औ मानवियन मा बिही यतकव्वमु अन यहसुलुल मानल मुक्तजी اي معنى من المعاني المعتبرة على المعرب المقتضية للإعراب ففي جاء زيد جاء عامل إذ به حصل معنى الفاعلية في زيد فجعل الرفع علامة لها وفي رأيت زيدا رأيت عامل إذ به حصل معنى المفعولية في زيدا فجعل النصب علامة لها وفي مررت بزيد الباء عامل إذ به حصل معنى الإضافة في زيد فجعل الجر علامة لها. अच्छा भाई गुज़श्ता सबक में आपने पढ़ा था ये इराब जो है मौरब के आखिर में क्यों आता है, दरमियान में या शुरू में क्यों नहीं आता. तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि जो इसम है ये मुसम्मा पर दलालत करता है और ये जो एराब होते हैं ये उस मुसम्मा की सिफत पर दलालत करते हैं और जात मुकद्दम होती है सिफत पर. तो इसी तरह जो दाल अलस जात है उसको भी मुकद्दम होना चाहिए दाल अलस सिफत पर. तो इसलिए दाल अलस सिफत यानी एराब को मुअख्खर किया गया भाई. और फिर उसके बाद वजह तस्मिया जिक्र की थी कि ये एराब को एराब क्यों कहते हैं. तो बतलाया था कि ये आरबहू से माखूज है. जब अरबी में कोई वाजह कलाम करे तो कहते हैं आरबल कलाम फुलानुन, फुलान ने वाजह कलाम किया. तो ये एराब भी क्या करते हैं, ये एराब भी माना की वजाहत कर देते हैं कि ये जो इसम है कि ये फाइल है या मफूल है या मुजाफिल है या ये माखूज है. आरिबत मियादतुहू से, आरिबा का माना है खराब होना फासिद होना. और फिर इसको ले गए बाबे इफ़ाल में और बाबे इफ़ाल में कभी हमजा सलबे माखज के लिए आता है तो यहां भी ये जो हमजा है सलबे माखज के लिए है. तो एराब का माना होगा फसाद को दूर करना. तो एराब भी क्या करता है इबहाम के फसाद को दूर कर देता है. अगर आप एराब नहीं पढ़ेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कौन फाइल है और कौन मफूल है. लेकिन जब एराब पढ़ देंगे तो वो एराब वो जो इबहाम था उस फसाद को दूर कर देगा खत्म कर देगा और पता चल जाएगा कि कौन फाइल है और कौन मफूल है. फिर उसके बाद बतलाया था कि इसकी जो किस्में हैं अनवा जो हैं वो तीन हैं रफा नसब और जर. और अनवाउहू के बाद अनवाहु एराबिल इस्मी, एक तो जमीर का मर्जा बतलाया साहिब जामी ने और नीज ये बतलाया कि ये इसम के एराब की किस्में बयान हो रही हैं लिहाजा आप ये इश्काल न करना कि जज़म भी तो एराब की एक किस्म है उसको क्यों नहीं जिक्र किया क्योंकि वो तो फेल का एराब है इसम का एराब नहीं. इसम का एराब तो यही तीन किस्में हैं उसकी रफा नसब और जर. और फिर उसके बाद ये रफा नसब और जर से पहले सलासतुन का लफ्ज निकाला था साहिब जामी ने. मैंने बतलाया कि इसमें दो वजहें आप जिक्र कर सकते हैं. या तो वो ये बतलाना चाहते हैं कि रफ़ऊं व नस्बों व जर्रुन इनमें अतफ मुकद्दम है, पहले अतफ होगा तीनों मिलेंगे फिर इनका हमल होगा अनवाउहू पर क्योंकि अनवाउहू जमा है और एक एक का हमल करोगे तो मुफरत का हमल जमा पर हो जाएगा वो दुरुस्त नहीं है. तो तीनों जब मिल जाएंगे तो ये भी जमा बन गए अब जमा का हमल जमा पर ठीक हो जाएगा. या वो ये बतलाना चाहते हैं कि ये अनवाउहू की जो खबर है वो रफ़ऊं व नस्बों व जरुन नहीं है बल्कि सलासतुन खबर है भाई और ये उससे बदल वाके हो रहे हैं या इनके लिए मुब्तदा अलग महजूफ है और वो फिर चाहें एक ही मुब्तदा तीनों के लिए निकाल लें कि ही या रफ़ऊं व नस्बों व जरुन वो तीन कौन से हैं रफा नसब और जर हैं या हर एक के लिए अलग अलग मुब्तदा निकाल लो कि अहदुहा रफ़ुन उन अनवा में से एक किस्म क्या है रफा है वसानीहा नस्बुन और दूसरी किस्म नसब है वसालिसुहा जरुन और तीसरी किस्म जर है. उसके बाद फिर इन्होंने यह बतलाया कि यहां तीन नाम हैं रफा नसब जर और जम्मुन फतहुन और कसरुन और तीसरा है जम्मतुन फतहतुन कसरतुन जिसमें गोलता भी साथ आकर जुड़ गई. तो इनमें रफा नसब और जर ये मौरब के साथ खास हैं यानी ये हरकात और हरूफ एराबिया पर बोले जाते हैं और जम्मुन फतहुन कसरुन ये हरकात बिनाइया के साथ खास हैं और जम्मतुन फतहतुन कसरतुन ये दोनों पर बोले जाते हैं, लेकिन हरकात बिनाइया पर इनका इतलाक ज्यादा है और हरकात एराबिया पर इनका इतलाक कलील है भाई। उसके बाद फिर इन्होंने यह बतलाया था कि रफा जो है वह फाइल होने की अलामत है और नसब मफूल होने की अलामत है और जर मुजाफिले होने की अलामत है। और फिर यह भी बतलाया कि फाइल होना आम है, चाहे हकीकतन फाइल हो चाहे हुक्मन फाइल हो, ताकि बाकी मरफूआत भी इसके अंदर दाखिल हो जाए भाई, जैसे मुब्तदा और खबर हैं, क्योंकि वो तो हकीकतन फाइल नहीं है, अलबत्ता हुक्मन वो भी फाइल हैं। यानी जैसे फाइल कलाम के अंदर उम्दा वाक़े होता है, मुस्नदिले बनता है, इसी तरह ये मुब्तदा खबर वगैरह ये भी कलाम में उम्दा होते हैं, यानी मुस्नदिले बनते हैं या मुस्नद बनते हैं। जबकि नसब जो है वो मफूल होने की अलामत है और मफूल होना वो भी आम है, चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो। तो मफूल होने को भी आम कर दिया कि वह हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो, ताकि जो मफूल के मुलहकात हैं यानी हाल तमीज वगैरह वो भी इसके अंदर दाखिल हो जाए भाई। और जर जो है वह मुजाफिले होने की अलामत है भाई, जर मुजाफिले होने की अलामत है। और इस इजाफत के आखिर में या मुशद्दद और गोलता को नहीं मिलाया, वजह यह कि यह खुद ही मस्तर है, फाइलियत वो तो फाइल से बना, तो उसको मस्तर बनाने के लिए आखिर में या मुशद्दद मिलाई गई, और मफूलियत वो मफूल तो सिफत थी, उसको भी मस्तर बनाने के लिए या मुशद्दद साथ लगाई गई, और इजाफत ये तो खुद ही मस्तर है, यहां या मुशद्दद मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने यह बतलाया कि ये रफा जो है फाइल के साथ खास क्यों है, नसब मफूल के साथ खास क्यों है और जर मुजाफिले के साथ खास क्यों है। तो बतलाया कि रफा जो है वो सकील है और फाइल कलील हैं, तो जो कलील थे उनको सकील वाली हरकत दे दी, और मफाइल चूंकि कसीर थे तो उनको नसब वाली अलामत दे दी जो हल्की है खफीफ है, ताकि कलाम में यह खफीफ हरकत ज्यादा आए, जुबान पर अदायगी आसान हो। और फिर सिर्फ जर ही बच गया था तो मजबूरन मुजाफिले को जर ही देना पड़ा। अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं अल आमिलु लफ्जियन कान औ मानवियन मा बिही यतक़व्वमु अन यहसुलुल मानल मुक्तज़ी أي معنى من المعاني المعتبرة على المعرب المقتزية للإعراب। अब आमिल की तारीफ करने लगे हैं। सबसे पहले मतन मतन देख लीजिए। कहते हैं अल आमिलु मा बिही यतक़व्वमुल मानल मुक्तज़ी للإعراب। अल आमिलु आमिल जो है मा वो चीज है, बिही यतक़व्वमु कि उससे हासिल होता है, उसके जरिए हासिल होता है, यह तकव्वुम का माना हासिल होना, कि इसके जरिए हासिल होता है। क्या चीज हासिल होती है? अल मानल मुक्तज़ी लिल इराब, वो माना जो इराब का तकाजा कर रहा है। आमिल वो चीज है जिसके जरिए वो माना हासिल होता है जो इराब का तकाजा करता है। मैंने कल आपको तीन चार चीजें लिखवाई थी। सबसे पहले आमिल आता है, मौरब के ऊपर आमिल दाखिल होता है, और यह आमिल उसके अंदर एक माना पैदा कर देता है, या फाइलियत वाला या मफूलियत वाला या मुजाफोन इले वाला, और फिर यह माना तकाजा करता है एराब का, और फिर जब एराब आ जाता है तो मौरब का आखिर मुख्तलिफ हो जाता है। तो आमिल किसको वजूद देता है? माना मुक्तजी को, और माना मुक्तजी यानी वो माना जो तकाजा करता है एराब का। तो आमिल वो सबब है किसके लिए? माना मुक्तजी के लिए, और माना मुक्तजी सबब है किसके लिए? एराब के लिए, और एराब सबब है किस चीज के लिए? इख्तिलाफ आखिर के लिए। बात जहन में आ गई कि गुज़श्ता से पेवस्ता सबक में मैंने ये सारी तरतीब आपको लिखवाई थी। तो देखो अब ये जो माना मुक्तजी है इसको कौन वजूद देता है? आमिल ने किसको वजूद दिया? माने मुक्तजी को। माने मुक्तजी ने किसको वजूद दिया? एराब को। और एराब ने किसको वजूद दिया? इख्तिलाफ आखिर को। तो माने मुक्तजी को किसने वजूद दिया? आमिल ने भाई। किसने? आमिल जो है वो माने मुक्तजी को वजूद देता है। बात समझ में आ गई? वही यहां बयान कर रहे हैं कि अल आमिलु मा बिही यतकव्वमुल मानल मुक्तजी लिल इराब, आमिल वो चीज है जिसके जरिए वो वाला माना हासिल होता है जो इराब का तकाजा करता है, यानी फाइलियत वाला या मफूलियत वाला या मुजाफिले वाला। तो ये फाइलियत वाला माना या मफूलियत वाला माना या मुजाफिले वाला माना ये किससे हासिल हुआ, इसका सबब कौन बना, आमिल बना। भाई बात समझ में आ गई, देखिए भाई किताब पर कहते हैं अल आमिलु मा बिही यतकव्वमुल मानल मुक्तजी लिल इराब, आमिल वो चीज है कि उसके जरिए हासिल होता है वो माना जो तकाजा करता है इराब का। अब शरा के साथ देखिए, कहते हैं अल आमिलु लफ्जियन कान अव मानवियन, जी आमिल के बाद लफ्जियन कान अव मानवियन निकाल कर साहिब जामी दर असल ये बतलाना चाहते हैं कि ये जो आमिल की तारीफ हो रही है ये सिर्फ आमिल लफ्जी की तारीफ नहीं है, बल्कि ये चाहे आमिल लफ्जी हो चाहे आमिल मानवी हो, दोनों की तारीफ हो रही है। भाई एक होता है आमिल लफ्जी, जाराबा जैदुन, ये जैदुन को रफा किसने दिया, जाराबा ने, और जाराबा लफ्ज है, आपने इस पर तलफुज किया है बाकायदा। और जैदुन कायमुन ये मुब्तदा खबर है, जैदुन पर भी रफाया मुब्तदा है, कायमुन पर भी रफाया ये खबर है, और मुब्तदा और खबर इनमें आमिल इब्तिदा होती है, इनमें आमिल इब्तिदा। और इब्तिदा किसे कहते हैं, वो इसम जो मुस्नद या मुस्नद इलैह हो और आमिल लफ्जी से खाली हो। तो उसका आमिल लफ्जी से खाली होना, भाई वो तो मुस्नद इलैह है या मुस्नद है, तो कोई आमिल तो चाहिए, तो वो आमिल उसको कहते हैं कि इसके अंदर फिर इब्तिदा आमिल है। तो इब्तिदा का क्या माना, मुस्नद या मुस्नद इलैह का आमिल लफ्जी से खाली होना। तो मुब्तदा में भी कोई आमिल लफ्जी नहीं, खबर में भी कोई आमिल लफ्जी नहीं, तो फिर इनमें आमिल इब्तिदा है, यानी आमिल लफ्जी से ये खाली है, तो ये इब्तिदा आमिल है, ये जो आमिल मानवी है, तो ये आमिल मानवी है, यानी माना अमल कर रहा है, यहां पर कोई लफ्ज अमल नहीं कर रहा। ये जैदुन कायमुन, जैदुन को जो रफा दिया ये कोई लफ्जी आमिल ने नहीं दिया, बल्कि मानवी आमिल ने, माना ने इसको रफा दिया है और वो इब्तिदा है। और कायमुन को जो रफा दिया वो भी इब्तिदा ने दिया, किसी लफ्ज ने नहीं दिया, तो माना आमिल है, लफ्ज आमिल नहीं। तो आमिल कभी लफ्जी होता है कभी मानवी। साहिब जामी बतला रहे हैं कि ये जो आमिल की तारीफ की जा रही है कि ये आमिल लफ्जी और मानवी दोनों को शामिल है, दोनों इसके अंदर दाखिल हो गए, तो आमिल आम है चाहे लफ्जी हो या मानवी, तो सब आमिल इसमें आ गए भाई। तो ये दोनों की तारीफ है। मा बिही यतकव्वमु अयहसुलु, अयहसुलु के जरिए यतकव्वमु का माना बयान कर रहे हैं साहिब जामी कि यहां यतकव्वमु किस माना में है, यहसुलु के माना में है। तो आमिल वो चीज है, बिही यतकव्वमु अयहसुलु यानी उसके जरिए हासिल होता है, अल मानल मुक्तजी वो माना जो तकाजा करने वाला है। आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं, ऐ मानम मिनल मानिल मुअतविरति अलल मुअरबिल मुक्तजियति, भाई मतन में तो आया अल मानल मुक्तजी, मारिफा आया, अल माना आया, और साहिब जामी क्या फरमा रहे हैं, ऐ मानम मिनल मानी, नकेरा के साथ उसकी तफसीर कर रहे हैं, बतलाना यह चाहते हैं कि अल माना पर जो अलिफ लाम आया है वो अहदे खारजी के लिए नहीं है बल्कि अहदे जहनी के लिए है, और अहदे जहनी वाला अलिफ लाम जब किसी लफ्ज पर दाखिल होता है लफ्जों में तो वो मारिफा बन जाता है लेकिन माना के एतबार से वो नकेरा रहता है, इसीलिए माना नकेरा के साथ उसकी तफसीर की। तो इस माना से कोई खास माना नहीं मुराद, कोई एक माना जो एराब का तकाजा करे, चाहे वो फाइलियत वाला माना हो चाहे मफूलियत वाला हो चाहे मुजाफ इले वाला माना हो, कोई भी माना हो। बात समझ में आ, वरना तो अल माना का क्या तर्जमा होगा, वो वाला माना अगर अहदे खारिजी मुराद लें, अगर अहदे खारिजी मुराद लें फिर तो किसी मुअय्यन माना की तरफ इशारा होगा, वो वाला माना जिसके जरिए क्या हासिल हो रहा है एराब। और यहां कोई मुअय्यन माना मुराद है या कोई भी माना हो, कोई भी माना हो चाहे फाइलियत वाला हो चाहे मफूलियत वाला हो चाहे मुजाफिले वाला। तो कहते हैं अल मानल मुक्तजी अय मानम मिनल मानिल मुअतविरति अलल मुअरबी, यानी कोई माना उन मानी में से जो बारी बारी आ रहे हैं मुअरब पर, अल मुक्तजियति लिल इराबी वो मानी जो इराब का तकाजा करने वाले हैं, वो मानी जो वो मानी जो एराब का तकाजा करने वाले हैं उनमें से कोई एक माना जिसके जरिए हासिल हो जाए उसको आमिल कहते हैं। फिर सुनो, आमिल किसे कहते हैं? आमिल वो चीज है जिसके जरिए कोई ऐसा माना हासिल हो जाए जो किसका तकाजा कर रहा हो, एराब का। फिर देखो भाई, ऐमान मिनल मानिल मोतविरति अलल मोरबिल मुक्तजियति लिल एराबी, यानी कोई एक माना उन मानी में से जो बारी बारी मोरब पर आते हैं, अल मुक्तजियति लिल एराबी, जो एराब का तकाजा करते हैं। फफी जा ज़ैदुन जा आमिलुन, तो जा ज़ैदुन के अंदर जा आमिल है भाई, इसने जैद को रफा दिया। इस भी ही हसला मानल फाइलियति फी ज़ैदुन, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से फाइलियत वाला माना हासिल हो गया। फी ज़ैदुन किसके अंदर? ज़ैदुन के अंदर, अंदर। तवज्जो है, जा ज़ैदुन के अंदर जा आमिल है क्योंकि इस जा की वजह से ज़ैदुन में कौन सा माना हासिल हुआ, कौन सा माना उसके अंदर आ गया? फाइलियत वाला माना आ गया। और इस माना ने क्या तकाजा किया कि इस ज़ैद पर कौन सा इराब पढ़ो? रफा पढ़ो, क्योंकि यह फाइल है। तो कहते हैं फफी जा ज़ैदुन जा आमिलुन, तो जा ज़ैदुन के अंदर जा आमिल है। इस भी ही हसल मानल फाइलियति फी ज़ैदुन, क्योंकि इसकी वजह से जो है फाइलियत वाला माना हासिल हो रहा है ज़ैदुन में। मैंने पढ़ा फी ज़ैदुन, फी ज़ैदुन, फी तो जर देता है, तो मैंने ज़ैदिन नहीं पढ़ा बल्कि क्या पढ़ा? ज़ैदुन। याद रखो, इसको कहते हैं एराब हिकाई। इसको क्या कहते हैं? एराब हिकाई। एराब हिकाई यह है कि एक लफ्ज आप लेते हैं किसी जगह से और उस जगह में उस पर जो एराब था यहां पर भी वही एराब पढ़ देते हैं, यहां पर भी। तो यह जो ज़ैदुन का लफ्ज लिया हमने कहां से लिया? जा ज़ैदुन से। तवज्जो है, ये जा ज़ैदुन से लिया हमने, और जा ज़ैदुन में ज़ैदुन पर कौन सा एराब है? रफा है। जब उस पर रफा है तो यहां भी हमने क्या पढ़ दिया? यहां भी रफा पढ़ दिया। इसको कहते हैं एराब हिकाई। हिकायत का माना होता है बात, बात। तो देखो, उस बात में, उस हिकायत में जो एराब था वही एराब यहां पढ़ दिया। हालांकि यहां तो फी दाखिल हो रहा है, जर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने इस पर जर नहीं पढ़ा बल्कि वही एराब हिकाई पढ़ दिया। यानी वो एराब जो हिकायत में जैद पर था, उस जुमले में जैद पर था, वही एराब यहां भी पढ़ दिया। तो फी ज़ैदुन पढ़ा। तो ज़ैदुन लफ्जों के एतबार से मरफू है, लफ्जों के एतबार से ज़ैदुन पढ़ रहा हूं ना, तलफुज रफा पर कर रहा हूं, नसब पर या जर पर? रफा पर। तो लफ्जों के एतबार से मरफू पढ़ रहा हूं, और क्यों मरफू पढ़ रहा हूं? एराब हिकाई की वजह से, क्योंकि हिकायत में इस पर रफा आया था, जा ज़ैदुन में इस पर रफा आया था। तो फी ज़ैदुन, इसके अंदर ज़ैदुन लफ्जों के एतबार से मरफू है, महलन मजरूर है क्योंकि फी दाखिल हो रहा है। महलन क्या है? यह जगह जर वाली है, तो यह महल, महल का माना जगह। महलन मजरूर है, जगह के एतबार से मजरूर है, लेकिन हिकायत के एतबार से मरफू है, इस पर रफा है। बात समझ में आ गई? तो ये जो एराब हिकाई होता है किसी लफ्ज पर, आपकी मर्जी है, चाहे उस पर एराब हिकाई पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो मैं इसको चाहे फी ज़ैदुन पढ़ूं चाहे फी ज़ैदिन पढ़ूं, एक ही बात है। फी ज़ैदुन पढ़ूं तो ये एराब हिकाई हो जाएगा, जहां से लिया था वही एराब यहां भी पढ़ दिया, और चाहूं तो इसके महल के मुताबिक इस पर मैं एराब पढ़ूं, और महल के एतबार से तो यह मजरूर है, फी दाखिल हो रहा है। तो फी ज़ैदिन पढ़ना भी सही और फी ज़ैदुन पढ़ना भी सही, लेकिन मैंने फी ज़ैदुन पढ़ा, वजह यह क्योंकि आगे आ रहा है एक सतर के बाद फी ज़ैदन, क्या आ रहा है? फी ज़ैदन आ रहा है। देखो, वहां भी शारे है जामी ने एराब हिकाई के साथ इसको दर्ज किया है, तो सारों पर क्या करो? एराब हिकाई पढ़ो, जो इन ये दो तीन जुमलों में आएंगे मौके के मुताबिक। फिर देखिए, कहते हैं फफी जा ज़ैदुन जा आमिलुन इस बिही हसल मानल फाइलियति फी ज़ैदुन, तो जा ज़ैदुन के अंदर जा आमिल है क्योंकि इसकी वजह से फाइलियत वाला माना हासिल हो रहा है ज़ैदुन में। फजुइल रफ़ अलामतल्लाह, तो रफा को उसके लिए अलामत बना दिया गया। زید میں فاعلیت والا معنی تھا تو رفع کو اس کے لیے علامت بنا دیا. زید ان کا رفع کیا بتلا رہا ہے کہ زید ان میں کون سا معنی ہے؟ فاعلیت والا معنی ہے. وفی رأیتُ زیدن, اور یہ جو رأیتُ زیدن کا جملہ ہے تو اس کے اندر رأیتُ عاملٌ, رأیتُ جو ہے وہ عامل ہے. اس بھی حصل معنى المفعولیت فی زیدن, اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے مفعولیت والا معنی حاصل ہوا زیدن میں. دیکھا یہ زیدن پر پھر اعراب حکائی ہے, پیچھے آیا تھا نا رأیتُ زیدن, وہاں زیدن منصوب تھا. فَجُعِلَ النَّصْبُ عَلَامَةً لَهَا, تو نصب کو اس مفعولیت کے لیے علامت بنا دیا گیا. عبارت سمجھ میں آ گئی, پھر سنو عبارت. کہتے ہیں وفی رأیتُ زیدن رأیتُ عاملٌ, اور رأیتُ زیدن کے اندر رأیتُ عامل ہے. اس بھی حصل معنى المفعولیت فی زیدن, اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے مفعولیت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدن میں. فجعل النصب علامة لها, تو نصب کو اس مفعولیت کے لیے علامت بنا دیا گیا. دیکھو رأیتُ زیدن, اس پر نصب پڑا, یہ نصب کس پر دلالت کر رہا ہے کہ زیدن میں کون سا معنی ہے؟ مفعولیت والا معنی ہے. وفی مررتُ بزیدٍ, اور مررتُ بزیدٍ کے اندر الباء عاملٌ, با جو ہے عامل ہے, زید کو جر دے رہی ہے. تو کہتے ہیں وفی مررتُ بزیدٍ, مررتُ بزیدٍ کے اندر الباء عاملٌ, با جو ہے وہ عامل ہے. اس بھی حصل معنى الاضافت فی زیدٍ, اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے اضافت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدٍ کے اندر. فجعل الجر علامة لها, تو جر کو اضافت کے لیے علامت بنا دیا گیا. مررت بزید, یہ زید پر جو جر آیا اس جر نے کس پر دلالت کر دی؟ کہ اس میں اضافت والا معنی ہے, زید میں اضافت والا معنی ہے. فالمفرد المنصرف, جی اب اعراب کی قسمیں شروع ہو گئیں. معرب کسے کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا, معرب کا حکم بھی بتلا دیا, اور اعراب کسے کہتے ہیں یہ بھی بتلا دیا, اور اعراب کی انواع بھی بتلا دی کہ رفع نصب اور جر ہے, اور اس کے بعد پھر عامل کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ عامل کسے کہتے ہیں. اب اعراب کے اعتبار سے اسم کی جو 16 قسمیں آپ نے نحمیر میں پڑھی ہیں ان کو اب صاحب کافیہ ذکر کریں گے, اور بے انتہا مختصر لفظوں میں. صاحب کافیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سے مختصر لفظوں میں میں لمبی سے لمبی بات کر دوں, تو وہ مختصر لفظوں میں وہ 16 قسموں کو بیان کریں گے. بھائی دیکھیے, بھائی پہلے متن صرف دیکھ لیں. کہتے ہیں فالمفرد المنصرف والجمع المکسر المنصرف بالضمت رفعا والفتحة نصبا والکسرة جرا. تو مفرد منصرف جو ہے, مفرد منصرف بھائی جو مفرد ہو یعنی تثنیہ جمانہ ہو, اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو. تو مفرد منصرف کسے کہیں گے؟ جو تثنیہ جمع بھی نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو. اور اسی طرح جمع المکسر المنصرف, جمع مکسر منصرف, جمع مکسر جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے, جیسے رجل کی جمع رجال. بھائی رجال, رجل میں دیکھو را پر زبر ہے اور جیم پر پیش ہے, لیکن رجال میں دیکھو را کے نیچے زیر ہے اور جیم پر زبر ہے, اور رجل میں تو جیم کے بعد لام تھا لیکن یہاں رجال میں جیم کے بعد الف ہے اور پھر لام ہے. تو مفرد کا سارا وزن ٹوٹ گیا, سارا وزن. مسلمون سے جمع بناؤ مسلمون, دیکھو واو اور نون سے یہ جمع بن گئی لیکن وہ مسلمون کا سارا وزن برقرار ہے ابھی بھی, تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم یا جمع صحیح. اور یہ جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے, جیسے رجلون سے جمع بنی رجالون, اس کو کہتے ہیں جمع مکسر. بھائی جمع مکسر. اور دوسری مثال لے لو, جیسے طالب, طالب کی جمع ہے طلبتن. طالب طا پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے, اور طلبتن اس میں طا کے بعد لام ہے, درمیان میں الف ختم کر دیا گیا. تو دیکھو مفرد کا وزن ٹوٹ گیا, طالبن کا اور وزن, طلبتن کا اور وزن ہے. بھائی تو جمع مکسر, اور جمع مکسر بھی کون سی ہو؟ منصرف ہو. بھائی کون سی جمع؟ منصرف. کیونکہ ایک جمع مکسر وہ ہے جو جمع منتحل جموع ہے, जमा मुंतहर जो मुआबई और वो गैर मुनसरिफ है, वो दो सबबों के कायम मकाम है। जमा मुंतहल जुमुआ आगे उसका जिक्र आ जाएगा, वो जमा जिसमें अलिफे जमा के बाद दो या तीन हर्फ आ जाएं, जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद, देखो अलिफ के बाद जीम और दाल दो हर्फ हैं, या मिसबाह की जमा मसाबीह बई, देखो मसाबीह बई अलिफ के बाद बा या हा तीन हरूफ आ गए, तो जमा मुंतहल जुमुआ उसमें अलिफ जमा के बाद दो या तीन हरूफ होते हैं और वो गैर मुनसरिफ है, वो दो सबबों के कायम मकाम है। तो लिहाजा बतला दिया कि जमा मुकस्सर से वो वाली जमा मुराद नहीं है, बल्कि वो जमा मुकस्सर अल मुनसरिफ जो मुनसरिफ हो वो मुराद है। तो ये जो दोनों किस्में हैं, मुफरद मुनसरिफ और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन दोनों का एराब क्या है? बिजम्मति रफअन, कि इनका एराब जम्मा के साथ आएगा, रफअन यानी रफई हालत में, और वल फतहति नस्बन, और इनका एराब फतहा के साथ आएगा नसब की हालत में, वल कसरती जर्रन, और इनका एराब कसरा आएगा जर की हालत में। बेजम्मति रफअन, इनका एराब किसके साथ होगा? बेजम्मति जम्मा के साथ, रफअन ऐ हालत रफई, किस हालत में? रफे की हालत में जम्मा के साथ होगा। वल फतहति नस्बन, और इनका इराब फतहा के साथ होगा, नस्बन ऐ फी हालत नस्बी, नसब वाली हालत में, और वल कसरती जर्रन, और इनका इराब कसरा के साथ होगा, जर्रन ऐ फी हालत जर्र, जर की हालत में। भाई मुफरद मुनसरिफ जैसे रजुल, जानी रजुलन, रायतु रजुलन, मररतु बि रजुलिन, देखा रफा किसके साथ आया? जम्मा के साथ। नसब किसके साथ आया? जा रजुलुन मरफू है और मैं क्या पढ़ रहा हूं? जम्मा। तो रफा किसके साथ आया? जम्मा के साथ, जा अनी रजुलुन, और नसब किसके साथ आएगा? फतहा के साथ, रअयतु रजुलन, देखो ये फतहा आ रहा है, और मररतु बि रजुलिन, ये जर किसके साथ आ रहा है? कसरा के साथ आ रहा है। ये तो था मुफरद मुनसरिफ उसकी मिसाल, जमा मुकस्सर मुनसरिफ की मिसाल। जानी तलबतुन, रअयतु तलबतन, मररतु बि तलबतिन, देखो इसमें भी तीनों तरह के एराब आ रहे हैं, रफा जम्मा के साथ, नसब फतहा के साथ, और जर कसरा के साथ। देखिए अब शरा के साथ कहते हैं फल मुफरदुल मुनसरिफ। मैंने आपको क्या बतलाया? मुफरद मुनसरिफ से कौन सा हिस्सा मुराद है? जो मुफरद हो यानी तस्निया जमा ना हो, और मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, वही बयान कर रहे हैं। अइल इस्मुल मुफरदुल लदी लम यकुम मुसन्नन वला मजमूअन वला गैर मुनसरिफिन, यानी वो इसमें मुफरद जो तस्निया जमा और गैर मुनसरिफ ना हो। देखो मतन में आया था फल मुफरदुल मुनसरिफ, और शरा में क्या आया? अइल इस्मुल मुफरदु, मुफरद से पहले इसम का लफ्ज निकाल लिया शारह जामी ने। बतलाना ये चाहते हैं कि ये मुफरद सिफत है और इसका मौसूफ इसम महजूफ है। अलिस्मुल मुफरद, वो इसम जो मुफरद हो। तो कहते हैं फल मुफरदुल मुनसरिफु अलिस्मुल मुफरदुल्लदी लम यकुम मुसन्नन वला मजमूअन वला गैर मुनसरिफिन, यानी वो इसमें मुफरद जो कि न तस्निया हो और न जमा हो और न गैर मुनसरिफ हो, कज़ैद व रजुलिन, जैसे कि जैद और रजुल ये दोनों मुफरद मुनसरिफ हैं। भाई तो देखिए भाई, साहिब काफिया ने यहां कहा मुफरद मुनसरिफ, जबकि हिदायतुन नहव और नहमीर वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि वो इसके साथ सहीह की कैद भी लगाते हैं, मुफरद मुनसरिफ सहीह, और फिर इसके साथ एक और किस्म भी जिक्र करते हैं जारी मजराए सही। भाई मुफरद मुनसरिफ सही जो मुफरद हो यानी तस्निया जमा ना हो, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, सहीह हो यानी नाकिस ना हो, भाई यानी जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना आए। जैसे जा अनी जैदुन, रअयतु जैदन, मररतु बि जैदिन, ये मुफरद भी है मुनसरिफ भी है और सहीह भी है, क्योंकि इसके आखिर में दाल है, वाव अलिफ या नहीं। और एक है जारी मजराए सही। भाई जारी मजराए सही यानी कायम मकाम सही, जारी मजराए सही आप पढ़ चुके हैं, वो इसम है जिसके आखिर में वाव या आए, लेकिन उसका माकबल साकिन हो, जैसे दलवन और जबयुन। और इस पर तीनों तरह के एराब लफ्जन आते हैं, जा अनी जबयुन रई तु जबयन मरर तु भी जबयन, जा अनी दलवन रई तु दलवन मरर तु भी दलविन। तो देखो ये सही तो नहीं, लेकिन ये कायम मकाम सही है। इस पर तीनों तरह के एराब आ सकते हैं, जैसे सही पर मुफरद मुनसरिफ सही पर जैसे तीनों एराब आ सकते थे, इसी तरह जारी मजरा सही पर भी तीनों एराब आ सकते हैं, रफा नसब और जर। तो ये सही तो नहीं, लेकिन कायम मकाम सही है, जारी मजराए सही है। कायम मकाम सही क्यों है? क्योंकि इस पर भी सही की तरह तीनों एराब आ सकते हैं। वजह यह कि इसके आखिर में बेशक वाव या है, लेकिन उस वाव या का माकबल साकिन है, ज़बयुन। देखो या से माकबल बा साकिन है, और दलवुन देखो वाव से माकबल लाम साकिन है। तो माकबल में साकिन आने की वजह से अब इन पर तीनों तरह का एराब पढ़ना आसान हो गया। तो यह सही तो नहीं, लेकिन कायम मकाम सही है, या यूं कहो जारी मजराए सही हैं। तो साहिब काफिया ने मुफरद मुनसरिफ कहा, सही की कैद साथ नहीं लगाई, क्योंकि अगर सही की कैद साथ लगा देते तो कायम मकाम सही को भी फिर बयान करना पड़ता, क्योंकि वो तो सही नहीं है, वो तो क्या है, कायम मकाम सही है। तो साहिब काफिया ने सही की कैद नहीं लगाई, तो अब ये दोनों किस्मों को शामिल हो गया, मुफरद मुनसरिफ चाहे वो सही हो चाहे कायम मकाम सही हो। वो भी क्या होता है, मुफरद होता है, मुनसरिफ होता है, लेकिन वो कायम मकाम सही है। तो अगर सही की कैद लगा देते तो सही के साथ साथ फिर कायम मकाम सही को अलग बयान करना पड़ता, और साहिब काफिया की कोशिश होती है मुख्तसर से मुख्तसर लफ्जों में लंबी बात कर दें। तो उन्होंने मुफरद मुनसरिफ के साथ सही की कैद नहीं लगाई। जब सही की कैद नहीं लगाई तो इसमें दोनों आ गए कि मुफरद मुनसरिफ चाहे वो सही हो चाहे सही के कायम मकाम हो, सही ना हो, बात समझ में आ गई। तो इसमें गोया दो किस्में आ गई, दो किस्में आ गई। वकदल जमउल मुकसरुल मुनसरिफ, और इसी तरह जो है जमा मुकसर मुनसरिफ है। भाई जमा मुकसर मुनसरिफ किसे कहते हैं, मैंने बतला दिया, वो जमा मुकसर जिसमें मुफरत का वजन टूट जाए और वो मुंतहल जुमुआ के वजन पर न हो। भाई अल्लज़ी लम यकुन बिना उल वाहिद फीहि सालिमन, यानी वो जमा जिसके अंदर वाहिद यानी मुफरद की बिना जो है सालिम न रहे, सही न रहे। वलम यकुन गैर मुनसरिफिन, और वो गैर मुनसरिफ भी न हो। का रिजाल व तलबतिन, जैसे रिजाल और तलबा। भाई फल अराब मिन हाज़ैन अल क़िस्मैन मिन अल इस्म, तो ये जो अराब की दो किस्में हैं इसम में से, इन इसम में से एराब की ये जो दो किस्में हैं, अलल असली, ये अपनी असल पर हैं, में वजह हैं दो वजह से। भाई इसम की एराब के एतबार से बहुत सी किस्में हैं, लेकिन इसम की ये वाली एराब के एतबार से ये दो जो किस्में हैं ये अपनी असल पर हैं, ये असल पर हैं दो वजह से, दो वजह से, दो एतबार से। किस तरह कहते हैं, देखो एक एराब बिल हरकत है, एक एराब बिल हर्फ है। एराब बिल हरकत जैदुन जैदन जैदिन, हरकत बदल रही है, और एक एराब बिल हर्फ है अबू का अबा का अबी का, इसमें हर्फ बदल रहा है, तवज्जो है। तो एक एराब बिल हर्फ है, एक एराब बिल हरकत है। याद रखो इन दोनों में से असल जो है वो एराब बिल हरकत है। असल क्या है, एराब बिल हरकत असल है, एराब बिल हर्फ असल नहीं। तो इनमें भी एराब बिल हरकत है, जानी जैदुन रअयतु जैदन मररतु बि जैदिन, देखो सिर्फ हरकत बदल रही है। जानी रजुलुन रअयतु रजुलन मररतु बि रजुलिन, सिर्फ हरकत बदल रही है। तो इस एतबार से ये भी अपने असल पर हैं, इनमें एराब बिल हरकत है, एराब बिल हर्फ नहीं, ये अपनी असल पर हैं। और नीज असल भी यह है कि एराब तीनों हालतों का अलग अलग होना चाहिए। रफा की सूरत में जम्मा आना चाहिए, नसब की सूरत में फतहा आना चाहिए, जर की सूरत में कसरा आना चाहिए। भाई आगे एराब आने वाला है जमा मुअन्नस सालिम, उसका एराब क्या है, जानी मुस्लिमातुन रई तो मुस्लिमातिन व मरर तो भी मुस्लिमातिन। देखो हालत नस्बी जरी एक जैसी है, रई तो मुस्लिमातिन और मरर तो भी मुस्लिमातिन, दोनों सूरतों में कसरा आ रहा है। तो इसमें एराब गोया तीन किस्म का हुआ या सिर्फ दो किस्म का एराब हो गया? दो किस्म का हुआ। लेकिन असल क्या है, एराब तीन किस्में हैं तो तीनों के लिए अलग अलग एराब आना चाहिए। तो ये जो दो किस्में आई, मुफरद मुनसरिफ और जमा मुकसर मुनसरिफ, इनमें एराब अपनी असल पर है, यानी एराब बिल हर्फ नहीं है बल्कि एराब बिल हरकत है, और नीज अपनी असल पर है बाई एतबार भी कि तीनों हालतों के लिए अलग अलग एराब है, कोई एक एराब भी दूसरे के ताबिअ नहीं है। तो कहते हैं फल एराब फी हाज़ैन अल क़िस्मैन मिन अल इस्मी, तो एराब जो है इसम की इन दोनों किस्मों में, अलल असली ये अपनी असल पर है, मिन वजहैन दो एतबार से, अहदुहुमा एक तो ये कि अन्नल असल फिल एराब अन यकून बिल हरकति, एराब में असल यह है कि वह हरकत के साथ होना चाहिए, वल एराब फी हिमा बिल हरकति, और इन दोनों में भी एराब जो है हरकत के साथ है, वसानी हिमा, और दूसरा इस एतबार से यह असल है, अन्नहु इदा कानल एराब बिल हरकति, कि जब एराब बिल हरकत हो तो फल असलु अन यकून बिल हरकात सलासी फिल अहवाल सलासी, तो वो हरकात भी तीन होनी चाहिए तीन अहवाल में, अहवाल तीन है तो हरकात भी कितनी होनी चाहिए तीन। तो कहते हैं फल असलु अन यकून बिल हरकात सलासी फिल अहवाल सलासी, दोबारा तर्जमा देखिए, कहते हैं वसानी हिमा, और दूसरा इस एतबार से असल है कि इजा कान अल एराब बिल हरकती, कि जब एराब बिल हरकत हो, फल असलु अन यकून बिल हरकात सलासी फिल अहवाल सलासी, तो असल यह है कि वो एराब तीन हरकतों के साथ होना चाहिए तीन अहवाल में, यानी तीनों में अलग अलग हरकतें होनी चाहिए, वल एराब फी हिमा बिल हरकात सलासी फिल अहवाल सलासी, और इनके अंदर भी जो एराब है वो तीन हरकतों के साथ है तीन अहवाल में, फल एराब फी हिमा बिल जम्मति रफअन, तो एराब जो है इन दोनों किस्मों के अंदर जम्मा के साथ आएगा, रफअन ऐ हालतर रफई, साहिब जामी ने रफअन के बाद ऐ हालतर रफई निकालकर बतला दिया कि ये मफूल फी वाके हो रहा है, ये जर्फ है, रफान क्या वाके हो रहा है, जर्फ है, तवज्जो है कि ये मफूल फी यानी जर्फ वाके हो रहा है, और मफूल फी मंसूब होता है, मफूल फी मंसूब होता है, तो ये रफान किस माना में हुआ, हालतर रफी, रफा वाली हालत, तवज्जो है, बिजम्मती इन दोनों में जो एराब है जम्मा के साथ है, रफअन ऐ हालतर रफई, रफा वाली हालत में, भाई जरफियत के लिए फी आता है, क्या आता है जी, तो बिजम्मती रफअन, रफअन का क्या तर्जमा किया साहिब जामी ने, हालतर रफई, हालतर और जरफियत के लिए क्या आता है फी, जरा फी ले आओ फिर आपको बात समझ में आएगी, कि इन दोनों में जो एराब है बिजम्मती जम्मा के साथ है, फी हालत रफी, कौन सी हालत में, रफे वाली हालत में, देखो फी आया या नहीं, और फी किस लिए आता है, जरफियत के लिए, मालूम हुआ यह हालत रफी क्या बन रहा है, ये मफूल फी है यानी जर्फ है, तो इबारत में तो काफिया में क्या आया, रफअन, साहिब जामी ने क्या बतलाया कि यह रफअन मफूल फी है, आई हालतर रफी बिजम्मती हालतर रफी, जम्मा के साथ है एराब, कौन सी हालत में, रफे वाली हालत में, और मैंने बतलाया कि जरफियत के लिए क्या आता है फी, तो यहां आप फी ले आओ आपको माना समझ में आ जाएगा कि हालतर रफी जर्फ बन रहा है, किस तरह कि इन दोनों में जो एराब है बिजम्मती जम्मा के साथ है, फी हालत रफी, कौन सी हालत में, रफे वाली हालत में, देखो फी लिया है माना सही हो गया या नहीं, और फी किस लिए आता है, जरफियत के लिए, मालूम हुआ हालत और रफ है, ये क्या बन रहा है, जर्फ है। तो कहते हैं फल एराब फी हिमा बिजम्मती रफअन ऐ हालत और रफई, तो एराब इन दोनों में जम्मा के साथ होगा, रफअन ऐ हालत और रफई यानी रफे की हालत में, वल फतहति नस्बन, और एराब जो है इनमें फथा के साथ होगा, नस्बन ऐ हालतन नस्बी यानी नसब वाली हालत में, वल कसरती जर्रन और एराब इनमें कसरा के साथ आएगा, जर्रन ऐ हालतल जर्री यानी जर वाली हालत में, फनस्बु कौलिही रफ़ऊ व नस्बऊ व जर्रन अला ज़र्फियति बितकदीरी मुज़ाफ़िन। तो ये जो नसब आया था रफ़अन नस्बन और जर्रन में, भाई साहिब काफिया ने क्या कहा था, बिजम्मति रफ़अन वल फतहति नस्बन वल कसरति जर्रन, इनमें रफ़अन नस्बन जर्रन इन पर नसब आया। साहिब जामी ने आपको बतला दिया कि इनमें जो नसब आया है वो मफूल फी यानी जर्फ होने की बिना पर आया है, ये सब क्या बन रहे हैं जर्फ, लेकिन इनसे पहले मुजाफ महजूफ है, ऐ हालत रफ़ी ऐ हालत नस्बी ऐ हालत जर्री। तो रफ़अन किस माने में हुआ, हालत रफ़ी, और नस्बन किस माने में हुआ, हालत नस्बी, और जर किस माने में हुआ, हालत जर्री। तो ये जर्फ है भाई, अलबत्त इनमें रफ़अन से पहले मुजाफ हालत का लफ मुजाफ महजूफ है तीनों के अंदर। कहते हैं फनसबु कौलिही रफ़अऊ व नस्बऊ व जर्रन अला ज़र्फियति, तो जो नसब आया मातिन के कौल रफ़अऊ व नस्बऊ व जर्रन में, यह अला ज़र्फियति ये ज़र्फ होने की बिना पर है, बितकदीर मुज़ाफ़िन मुज़ाफ़ की तकदीर के साथ यानी मुज़ाफ़ मुकद्दर है। देखो सब में हालत का लफ्ज़ ले आया नहीं, ये मुज़ाफ़ बीच में उन्होंने निकाल कर बतला दिया कि यह महजूफ है यहां पर भाई। ويحتمل النصب على الحاليه او المصدريه, और ये हाल होने की बिना पर या मस्तर होने की बिना पर भी नसब का इहतमाल रखता है। हमने तो बतला दिया रफ़अऊ व नस्बऊ व जर्रन इन पर नसब आया, तो ये नसब किस वजह से है, हमने तो बतला दिया कि ये ज़र्फ होने की वजह से है, ज़र्फ मंसूब होता है तो ये भी मंसूब है, अलबत्ता इनसे पहले हालत का लफ्ज़ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ निकाल लो। और आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि इनका नसब हाल होने की बिना पर है, हाल भी मंसूब होता है, या आप यह भी कह सकते हैं कि इनके अंदर जो नसब है वो मसदर होने की बिना पर है यानी मफूल मुतलक होने की वजह से, और मफूल मुतलक भी क्या होता है, मंसूब। तो नसब की गोया तीन वजहें यहां जारी हो सकती हैं, जर्फ होने की वजह से, या हाल होने की वजह से, या मसदर होने की वजह से। जर्फ होने की वजह से यानी मफूल फी बन रहा है, हाल होने की वजह से यानी हाल बन रहा है, और मस्तर होने की वजह से यानी मफूल मुतलक बन रहा है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयहतमिल नस्ब अल हालियति अविल मस्दरियति, और ये हाल होने या मस्तर होने की बिना पर भी नसब का इहतमाल रखता है। हाल कैसे बनेगा, हाल बनेगा कि रफ़अन को बमाने मरफूअन के ले लेंगे, किस माना में, तो रफ़अन मस्दर बमाने मरफूअन हो जाएगा, और नस्बन बमाने मंसूबन हो जाएगा, और जर्रन बमाने मजरूरन हो जाएगा। भाई इसलिए इधर देखिए, क्योंकि ये जो हाल है ये खबर के दर्जे में होता है, हाल क्या है, खबर के दर्जे में होता है, और खबर का जैसे मुब्तदा पर हमल होता है तो हाल का भी ज़ुल्हाल पर हमल होता है। जैदुन कायमुन, ये कायमुन खबर है, इसका हमल मैंने किस पर किया, जैद पर, जैद पर किया, तो ये सिफत का सीगा होना चाहिए, तो ये सिफत होगी तो फिर ही हमल हो सकेगा, अगर ये मस्दर हो फिर हमल नहीं हो सकता। जैदुन कियामुन, जैद कियाम है, ये बात बनती है नहीं, मस्दर का हमल जात पर नहीं हो सकता बल्कि सिफत का हमल होगा जात पर। जैदुन कायमुन भाई, तो यहां पर भी ये रफ़अऊ व नस्बऊ व जर्रन ये मस्दर हैं, ये क्या हैं, और आप क्या कह रहे हैं, ये मंसूब है किस वजह से, हाल होने की वजह से, और हाल का हमल होता है किस पर, ज़ुल्हाल पर, तवज्जो है, ज़ुल्हाल, और ज़ुल्हाल जात है, तो ये, और ये मस्दर हैं, तो ये मस्दर का हमल ज़ुल्हाल पर नहीं हो सकता, तो फिर इसको सिफत के माना में लेना पड़ेगा, यानी रफा बमाने मरफू के, और नसब बमाने मंसूब के, और जर बमाने मजरूर के लेना पड़ेगा। भाई ज़ैदिन जर है, तवज्जो है, ज़ैदिन जर है ये कहना सही, या ज़ैदिन मजरूर है ये कहना सही, ज़ैदिन मजरूर है, ज़ैद जर नहीं है, मस्तर नहीं है बल्कि मजरूर है, बात समझ में आ गई। तो लिहाजा जब हाल का हमल होता है जुलहाल पर, और जुलहाल तो है जात, और हाल यहां क्या है, मस्दर है, मस्दर का हमल तो जात पर नहीं हो सकता, तो इसको किस माना में लेना पड़ेगा, सिफत के माना में लेना पड़ेगा। और आप जानते हैं मस्दर कभी इसमें फाइल के माना में होता है, कभी इसमें मफूल के माना में, तो यहां ये इसमें मफूल के माना में होगा। रफअन बमाने मरफूअन, और नस्बन बमाने मनसूबन, और जर्रन बमाने मजरूरन। तो देखो गोया कलाम यूं बन गया, फल एराब उफी हिमा बि जम्मती, तो एराब जो है इन दोनों किस्मों में जम्मा के साथ होगा। मरफूअन ऐ हाल कौनी हिमा मरफूअनी, इस हाल में कि ये दोनों क्या हों, मरफू हों। और इनका एराब जो है बिल फतहती, फतहा के साथ होगा। नस्बन ऐ हाल कौनी हिमा मनसूबैनी, इस हाल में कि ये दोनों क्या हों, मनसूब हों, तो ये फतहा के साथ होंगे। और वल कसरति जर्रन, और इन दोनों का एराब कसरा के साथ होगा। हाल कौनी हिमा मजरूरैनी, इस हाल में कि ये दोनों किस्में क्या हों, मजरूर। ये दोनों किस्में मरफू होंगी तो जम्मा के साथ होंगी, ये दोनों किस्में मनसूब होंगी तो फथा के साथ होंगी। इबारत पे नजर है, फिर इबारत देखो, बिजम्मती रफाऊं वल फथाती नस्बाऊं वल कसरती जर्रन। अब मैं हाल के साथ तर्जमा करूंगा, ये दोनों किस्में जम्मा के साथ होंगी मरफू होने की हालत में, और ये दोनों किस्में फथा के साथ होंगी मनसूब होने की हालत में, और ये दोनों किस्में कसरा के साथ होंगी मजरूर होने की हालत में। देखा, हाल बना लिया, और फिर ये इसमें मफूल के माना में होंगे, या ये मस्तर होने की बिना पर मंसूब हैं, मस्तर होने की बिना पर
मंसूब।
जरब तो जरबन, ये जरबन मफूल मुतलक है। मफूल मुतलक किसे कहते हैं, जो माकबल फेल के माना में होता है और ये मंसूब होता है। तो जरब तो जरबन, ये जरबन मस्तर है जो माकबल फेल जरब तो के माना में है, तवज्जो है। तो यहां पर भी ये रफ अन नस्बन जर्रन, ये मफूल मुतलक वाके हो रहे हैं, इसलिए मंसूब है। तो सवाल पैदा होता है कि मफूल मुतलक तो उसको कहते हैं जो माकबल फेल के माने में हो, और पीछे तो यरफाऊ कोई फेल नहीं गुजरा, यनसुबू कोई फेल नहीं गुजरा, और यजुर्रू कोई फेल नहीं गुजरा। मफूल मुतलक किसे कहते हैं, जो माकबल फेल के माने में हो, माकबल में रफा वाला फेल आता तो रफान उससे मफूल मुतलक बनता, माकबल में नसब का फेल आता तो नसब उससे मफूल मुतलक बनता, माकबल में जर वाला फेल आता तो जर्रन उससे मफूल मुतलक बनता। तो ये मफूल मुतलक कैसे बन सकते हैं, तो याद रखो कि फिर इस सूरत में हर एक के लिए फेल महजूफ निकाल लेंगे। अयुरफ़ रफ़अन, या यूं कहो रुफ़िया रफ़अन, नुसीबा नस्बन, और जुर्रा जर्रन, फिर हर एक के लिए उसके मुताबिक निकाल लेंगे। तो इनका एराब आएगा बिज़म्मती, किसके साथ, जम्मा के साथ। रुफ़िया रफ़अन, कि इनमें से हर एक को जम्मा के साथ रफा दिया जाएगा। बात समझ में आ गए, तो इनके लिए फेल महजूफ निकाल लेंगे, फिर ये उसके लिए मफूल मुतलक बन जाएंगे। तो कहते हैं वयहतमिलुन नस्बा अलल हालियति अविल मस्दरियति, और ये नसब का एहतमाल भी रखता है हाल होने या मस्दर होने की बिना पर। फल किस्मुल अव्वल, किस्म अव्वल जो है, कौन सी किस्म अव्वल भाई, दो किस्में जिक्र की, एक मुफरद मुनसरिफ और एक जमा मुकसर मुनसरिफ। इन दोनों का एराब क्या है कि रफा जम्मा के साथ आएगा, नसब फथा के साथ, और जर कसरा के साथ। अब दोनों की अलग अलग मिसालें देंगे। तो कहते हैं फल किस्मुल अव्वल मिसलु जा अनी रजुलू व रअयतु रजुलन व मररतु बि रजुलिन। तो पहली किस्म जो है यानी कि मुफरद मुनसरिफ, उसकी मिसाल जो है जा अनी रजुलन व रअयतु रजुलन व मररतु बि रजुलिन। तो ये जो रजुल का लफ्ज है मुफरद मुनसरिफ है भाई। वल किस्मु सानी, और दूसरी किस्म जो है यानी जमा मुकसर मुनसरिफ, उसकी मिसाल जो है कहते हैं मिसलु जा अनी तलबतुन व रअयतु तलबतन व मररतु बि तलबतिन। मेरे पास तलबा आए, मैंने तलबा को देखा, और मररतु बि तलबतिन, मैं तलबा के पास से गुजरा। तो देखो इसमें तलबा ये जमा मुकसर मुनसरिफ है, और इस पर तीनों किस्म के एराब बिल हरकत आ रहे हैं भाई। आगे देखिए जमउल मुअन्नसि सालिमु, जमउल मुअन्नसि जमा मुजाफ, अल मुअन्नसि मुजाफुन इलैह, جمعو المؤنس السالم, یہ جمعو یہ مرفوع ہے, یہ مبتدا ہے بھائی, اور یہ مضاف ہے, اور المؤنس مضاف الیہ ہے. جمعو المؤنس, مؤنس کی جمع, اور السالم یہ صفت ہے جمع کی. توجہ ہے بھائی, مؤنس کی صفت بناؤ گے تو المؤنس وہ تو مجرور ہے, کیا پڑھنا پڑے گا؟ السالمی. موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے, تو اگر السالم مؤنس کی صفت بناؤ گے تو یوں پڑھنا پڑے گا, جمع المؤنس السالمی, وہ مؤنس جو سالم ہوتی ہے اس کی جمع. ترجمہ یوں بن جائے گا, وہ مؤنس جو سالم ہوتی ہے. بھئی مؤنث سالم ہوتی ہے یا وہ جمع سالم ہوتی ہے؟ جمع سالم ہوتی ہے بھئی, کہ اس میں مفرد کا وزن ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا بھئی. تو یہ سالم مؤنث کی صفت نہ بناؤ, اس کو جمع کی صفت بناؤ. توجہ ہے. اور جمع مضاف ہے المؤنث کی طرف, جمع تو ہے نکرہ, اور المؤنث پر الف لام ہے, یہ ہے معرفہ, اور نکرہ کی جب اضافت ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. غلام تو نکرہ ہے لیکن زید کی طرف اضافت کر دو غلام زیدین تو غلام بھی کیا بن گیا؟ معرفہ. تو جمع کی جب اضافت ہو گئی مؤنث کی طرف تو یہ جمع بھی معرفہ بن گیا, اسی لیے اس کی صفت السالم معرفہ لے کر آئے بھائی. اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہو, تو یہ السالم کس کی صفت؟ جمع کی. اور جمع تو مبتدا ہے مرفوع ہے, تو السالم کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مرفوع. تو عبارت کیا ہوئی؟ جمع المؤنس السالم, جمع مؤنس سالم بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. اب اس پر اشکال ہوتا ہے, ذرا لفظوں پہ غور کرو. جمع المؤنس, مؤنس کی وہ جمع, السالم جو سالم ہو, مؤنس کی وہ جمع جو سالم ہو. جمع مؤنس سالم کون سی جمع مراد ہے؟ جیسے مسلمتن کی جمع آتی ہے مسلماتن, جو الف تا کے ساتھ آئے. کس کے ساتھ آئے؟ جمع مؤنث سالم کسے کہتے ہیں جو الف تا کے ساتھ آئے؟ مسلمتن کی جمع کیا؟ مسلماتن. توجہ ہے, وہ جمع جو الف تا کے ساتھ آئے. اور یہ جمع جو الف تا کے ساتھ آتی ہے یہ صرف مؤنث کی جمع نہیں آتی, مذکر کی جمع بھی الف تا کے ساتھ آتی ہے. جیسے مجرورن, مجرورن کا لفظ اس کے ساتھ کوئی تانیث والی علامت ہے نہیں, تو یہ مذکر لفظ ہے لیکن اس کی جمع آتی ہے مجرورات. دیکھا مذکر کی جمع کس کے ساتھ آ گئی؟ الف تا کے ساتھ. منصوب کی جمع کیا؟ منصوبات. تو منصوب کا لفظ تو مذکر ہے لیکن اس کی جمع کس کے ساتھ آئی؟ الف تا کے ساتھ. تو معلوم ہوا یہ جو الف تا کے ساتھ جمع آتی ہے مذکر کی بھی آتی ہے اور مؤنث کی بھی آتی ہے. مسلمتن یہ مؤنث ہے, اس کی جمع بھی الف تا کے ساتھ مسلمات, اور منصوبن یہ مذکر ہے, اس کی جمع بھی الف تا کے ساتھ. لیکن لفظوں پہ غور کرو, جمع المؤنث السالم, مؤنث کی وہ جمع, السالم جو سالم ہو. مؤنث کی, معلوم ہوا یہ جو الف تا والی جمع ہے یہ صرف مؤنث کی جب جمع ہو وہ والی یہاں مراد ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کی جمع ہو؟ جمع المؤنث, مؤنث کی جمع ہو, مؤنث کی جمع ہو, اور مؤنث کی کون سی جمع ہو؟ سالم ہو, مکسر نہ ہو. تو شبہ پڑتا ہے شاید صرف وہ جو مؤنث کی جمع سالم آئے وہ مراد ہے, یعنی مسلمتن کی جمع آئی مسلمات یہ مراد ہے, مجرورن کی جمع مجرورات آئی وہ یہاں مراد نہیں. نہیں توجہ سبق کی طرف, یہ الف تا والی جمع مؤنث کی بھی آتی ہے اور مذکر کی بھی. تو انہوں نے کیا کہا؟ جمع المؤنث السالم, مؤنث کی وہ جمع, السالم جو کیا ہو؟ سالم ہو. تو معلوم ہوا مذکر کی جو جمع الف تا کے ساتھ آئی وہ تو نکل گئی اس میں سے. مجرورات یہ مؤنث کی جمع سالم ہے یا مذکر کی جمع سالم ہے؟ یہ مجرورات کس کی جمع ہے؟ مجرور کی. اور مجرور کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو یہ مذکر کی جمع ہے الف تا. آپ نے تو کیا کہا؟ جمع المؤنث السالم, مؤنث کی وہ جمع جو سالم ہو. مؤنث کی وہ جمع, دیکھا معلوم, مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو وہ اس سے نکل گئی. بات سمجھ میں آ گئی. तो उसका जवाब देंगे कि नहीं भाई, ये उसका नाम ही ये है, ये उमूमन मुअन्नस की ये जमा ज्यादातर आती है, इसका इसलिए इसका नाम ये रख दिया। हर वो जमा मुराद है जो अलिफ्ता के साथ आए, चाहे वो मुअन्नस की हो चाहे वो मुजक्कर की हो, तो ये उस जमा का नाम है भाई, ये उस जमा का नाम। और चूंकि ये ज्यादातर मुअन्नस की ये जमा आती है इसलिए इसका ये नाम रख दिया गया। अब जब ये जमा आ जाए अलिफ्ता के साथ तो फिर ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये कि इसका मुफरद मुजक्कर है या मुअन्नस, सब का यही हुक्म है जो आगे बयान होगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं जमउल मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम जो है वह हुआ मा यकून बिल अलिफी व ताई, और ये वो जमा है जो अलिफ और ता के साथ हो। देखा, कहते हैं लफ्जों की तरफ ना जाना, लफ्जों से तो यूं लगता है कि मुअन्नस की जो जमा सालिम है सिर्फ उसका हुक्म यह बयान हो रहा है, बल्कि नहीं, यह हर उस जमा का हुक्म है जो किसके साथ आए, अलिफ ता के साथ आए। तो वह हुआ मा यकून बिल अलिफ व ताई, इसके जरिए साहिब जामी यह बतलाना चाहते हैं कि जमा मुअन्नस सालिम से इस्तेलाही जमा मुअन्नस सालिम मुराद है, और वो इल्म नह में किसे कहते हैं जिसके आखिर में क्या आए, अलिफ ता आए भाई, अलिफ ता आए। तो कहते हैं वह हुआ मा यकून बिल अलिफ व ताई, और ये वो जमा है जो अलिफ और ता के साथ हो। वहतरज बिही अनिल मुकस्सरी फइन्नहु कद उलिमा, भाई ये सालिम की कैद क्यों लगाई? कहते हैं इसके जरिए एहतराज किया मुकस्सर से, इसलिए क्योंकि जमा मुकस्सर का हुक्म तो मालूम हो चुका है, पीछे हमने बता दिए जमा मुकस्सर मुनसरिफ का हुक्म अभी गुजर गया। तो कहते हैं वहतरज़ा बिही अनिल मुकस्सरी, और इस सालिम की कैद के जरिए एहतराज किया मुकस्सर से, जमा मुकस्सर से। फइन्नहु कद उलिमा, इसलिए क्योंकि उसको तो जान लिया गया है। बिज़म्मति रफ़अं वल कसरति नस्बं व जर्रन, इसका एराब किस तरह आएगा? बिज़म्मति, ज़म्मा के साथ आएगा। इधर देखिए मुस्लिमातुन, हालत रफ़ी में इस पर ज़म्मा आता है, और नस्बी और जर्री दोनों हालतों में कसरा आता है, नस्बी और जर्री दोनों। जानी मुस्लिमातुन, रअयतु मुस्लिमातिन, और मरर तो भी मुस्लिमातिन, तो जम्मा आएगा किसके साथ? रफा के साथ। और नसब और जर दोनों किसके साथ आएंगे? कसरा के साथ। अब यही बयान कर रहे हैं बे जम्मत रफन, ये जम्मा के साथ होगा हालत रफी में। वल कसरती नस्ब व जर्रन, और कसरा के साथ होगा हालत नस्बी और हालत जरी में। फइन नस्ब फीही ताबिउन लिल जर्री, भाई क्या वजह है इसमें दो एराब क्यों आए? कहते हैं भाई इसके अंदर जो नसब है उसको जर के ताबिया कर दिया गया। जर किसके साथ आया था? कसरा के साथ। तो नसब भी किसके साथ दिया गया? कसरा के साथ। तो नसब को किसके ताबिया कर दिया? जर के ताबिया कर दिया। जर किसके साथ आया था? कसरा के साथ। तो नसब भी किस तरह दे दिया? कसरा के साथ, यानी नसब को ताबे कर दिया जर के वजह। भाई क्यों? कहते हैं इसलिए क्योंकि ये फरा है जमा मुजक्कर सालिम की, जमा मुजक्कर सालिम असल और जमा मुअन्नस सालिम उसकी फरा, और असल के अंदर इस तरह था तो फरा को भी हमने उसके मुताबिक कर दिया। असल कौन? मुस्लिमूना, उसमें भी जरा हालत नस्वी जरी देखो, रए तो मुस्लिमीना और मरर तो भी मुस्लिमीना, देखो दोनों हालतों में या माकबल मकसूर है भाई, तो इसमें भी जो नसब है वो जर के ताबिया है, तो जब असल के अंदर नसब जर के ताबिया था तो फरा यानी जमा मुअन्नस सालिम के अंदर भी नसब को किसके ताबिया कर दिया गया? जर के ताबिया कर दिया गया। बात समझ में आ गई? कहते हैं फइन नस्ब फीही ताबिउन लिल जर्री, क्योंकि नसब जो है इसके अंदर वो ताबिया है जर के। इजरा अन लिल फरई अला वतीरतिल असली, वतीरा का माना है तरीका, तरीका अला वतीरतिल असली ऐ अला तरीकतिल असली। इजराअन, इजराअन ये मफूल लहू है, इजराअन मफूल लहू है। मफूल लहू किसे कहते हैं? जो मकबल फेल की इल्लत बयान करता है। ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की तादीबन, अदब सिखाने के लिए। तो देखो यह तादीबन वजह बतला रहा है कि पिटाई क्यों की गई, क्यों की गई पिटाई, तादीबन अदब सिखाने के लिए, तो यह मफूल लहू है और मफूल लहू मंसूब होता है और यह मकबल फेल की इल्लत बयान करता है, उसकी वजह बयान करता है। तो यहां पर भी यह इजराअन यह वजह बयान कर रहा है कि फैन्ना नस्बा फीही ताबिउन लिल जारी, कि इस जमा मुअन्नस सालिम में नसब जो है वो जर के ताबे है, इजराअन लिल फरई अला वतीरतिल असली, ताकि जारी किया जाए फरा को भी असल के तरीके पर, ताकि फरा को भी असल के तरीके पर जारी किया जाए, जो तरीका असल में जारी है फरा को भी उसी तरीके पर जारी किया जाए, और असल जो है उसके अंदर तो नसब जर के ताबे था, तो यहां भी नसब को जर के ताबे कर दिया गया। भाई तो कहते हैं इजराअन लिल फरई अला वतीरतिल असली लदी हुआ जमउल मुजक्कर सालिमो, ताकि जारी किया जाए फरा को भी उसी असल के तरीके पर, अल्लवी हुआ जमउल मुजक्कर सालिमो, यानी वो असल जो कि जमा मुजक्कर सालिम है, ताकि फरा को भी उस असल के तरीके पर जारी किया जाए जो जमा मुजक्कर सालिम है। भाई فَإِنَّ النَّصْبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ كَمَا سَيَجِيءُ ذِكْرُهُ, इसलिए क्योंकि जमा मुजक्कर सालिम के अंदर जो नसब होता है वो जर के ताबिअ है, कमा सयजीउ जैसे कि अन करीब आ जाएगा ज़िक्रुहु उसका जिक्र, मिसलु मिसाल के तौर पर जाअतनी मुस्लिमातुन, देखो ये रफा आया जम्मा के साथ, व रअयतु मुस्लिमातिन व मररतु बिमुस्लिमातिन, और नसब और जर दोनों कसरा के साथ आ गए, गैरुल मुनसरिफ बिज़म्मति रफ़अ वल फतहति नस्बा व जरन, इधर देखिए गैर मुनसरिफ का इराब, गैर मुनसरिफ जाअनी अहमदु रअयतु अहमदा मररतु बि अहमदा, गैर मुनसरिफ पर कसरा और तनवीन नहीं आते भाई, तो जाअनी अहमदु रअयतु अहमदा मररतु बि अहमदा, रअयतु अहमदा ये नसब है, देखो फतहा के साथ है, नसब है मफूल है ना, फतहा के साथ नसब आया, और मररतु बि अहमदा, देखो ये बा जर्रा दाखिल है लेकिन जर भी किस शक्ल में आया, फतहा की सूरत में आया, तो गैर मुनसरिफ में जर नसब के ताबे होता है, जैसे जमा मुअन्नस सालिम में, जमा मुअन्नस सालिम में क्या था, जमा मुअन्नस सालिम में नसब ताबिया था किसके, जर के, और गैर मुनसरिफ में इसका बरअक्स होता है, जो जर होता है वो ताबिया होता है नसब के। बात समझ में आ गए, तो कहते हैं गैरुल मुनसरिफी बिज़म्मति, गैर मुनसरिफ जो है उसका एराब जम्मा के साथ होगा, रफ़अन ऐ हालतर रफ़ी रफा की हालत में, वल फतहती और उसका एराब फतहा के साथ आएगा, नस्बं व जर्रन ऐ हालतन नस्ब व हालतल जर्री नसब और जर की हालत में, फल जर रुफी हिताबिउन लिन्नस्बी, तो इसके अंदर जो जर होता है यानी गैर मुनसरिफ में वो ताबे होता है नसब के, कमा स नस्कुरुहु जैसे कि हम अन करीब जिक्र करेंगे, नहु जा अनी अहमदु व रअयतु अहमदा व मररतु बि अहमदा, तो देखो इसके अंदर जा अनी अहमदु रफा जो है जम्मा के साथ आया, व रअयतु अहमदा व मररतु बि अहमदा, और नसब और जर दोनों फतहा के साथ आए। यहां तक बात अच्छी तरह समझ में आ गई, तो मालूम हुआ मुफरद मुनसरिफ सही और जमा मुकसर मुनसरिफ इन दोनों का एराब रफा जम्मा के साथ, नसब फतहा के साथ और जर कसरा के साथ, और जमा मुअन्नस सालिम जो है उसका रफा जम्मा के साथ और नसब और जर दोनों कसरा के साथ, और गैर मुनसरिफ जो है इसका रफा जम्मा के साथ और नसब और जर दोनों फतहा के साथ। बात समझ में आ गई, तो हासिल यह हुआ कि गोया हमने एराब के एतबार से इसम की पांच किस्में पढ़ ली आज भाई, एक मुफरद मुनसरिफ, मुफरद मुनसरिफ और इसमें दो किस्में आ गई, मुफरद मुनसरिफ सही भी और मुफरद मुनसरिफ जारी मजराए सही वो भी इसके अंदर आ गया, और इसी तरह जमा मुकसर मुनसरिफ और जमा मुअन्नस सालिम और गैर मुनसरिफ, तो ये पांच किस्में हो गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।